नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। त्रिपुरा में 60 सदस्यीय विधानसभा की 59 सीटों पर मतदान शुरू, 292 उम्मीदवार मैदान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आज आधारशिला रखेंगे। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए मुख्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली भारत सऊदी अरब संयुक्त आयोग की 12वीं बैठक में भाग लेने के लिए रियाद पहुंचे। मालदीव में व्यापक विरोध प्रदर्शन और जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम के जांच में सहयोग से इनकार के बाद राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला और पुरुष 2020 क्रिकेट मैच आज जोहान्सबर्ग में। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। त्रिपुरा में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। आज कुल 60 सीटों में से 59 पर मतदान हो रहा है। एक प्रत्याशी के निधन के कारण चालीराम सीट पर 12 मार्च को वोट डाले जाएंगे। 292 उम्मीदवारों में 20 महिलाएं हैं। आइए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता निशित जोशी के पास अगरतला। निशित, आप वहां पर किस और कौन से मतदान केंद्र में हैं, और हालांकि अभी मतदान शुरू हुए करीब एक घंटा बीता है, ऐसे में मतदाताओं में किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं?
जी चंद्रिका जी, मैं अभी बनमालीपुर निर्वाचन क्षेत्र में खड़ा हूं, जहां पे मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है। मतदाताओं में मतदान के लिए भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर बनमालीपुर निर्वाचन क्षेत्र की बात करें, ये एक प्रमुख निर्वाचन क्षेत्र है जहां पर विपक्षी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बिप्लव कुमार देव चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा सीपीआईएम के युवा नेता और उम्मीदवार अमल कुमार चक्रवर्ती और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता गोपाल चंद्र रॉय भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 8 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और जिनमें कुल 45,550 मतदाता है, जिसमें से 18,480 पुरुष और 20,768 महिलाएं हैं।
निश्चित, हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और निष्पक्ष मतदान के लिए जो चुनाव आयोग की व्यवस्थाएं हैं वो क्या हैं?
कड़ी सुरक्षा की बात करें तो मैं देख सकता हूँ कि अर्धसैनिक बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सुरक्षाकर्मी यहाँ पे तैनात है। यदि हम सुरक्षा उपायों की बात करें तो इस पर पुलिस महानिदेशक एके शुक्ला ने कहा है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत बांग्लादेश की सीमा को भी किसी भी समस्या से निपटने के लिए सील कर दिया है। जबकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि मतदान पूर्ण हो जाने के बाद भी राज्य में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय बलों की कुछ कंपनियां राज्य में रहेगी। और वेबकास्टिंग की बात करें तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीराम तरणी कांति जी ने कहा कि लगभग सभी मतदान बूथों का वेबकास्टिंग किया जाएगा, जिसके द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारी किसी भी समय मतदान प्रक्रिया पर निगरानी रख सकते हैं।
निश्चित, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के लोगों, खासतौर से युवा मतदाताओं से आज विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान करने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी ने नागालैंड विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्रियों सहित पार्टी के प्रमुख प्रचारक राज्य का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र भी एक संवाददाता सम्मेलन में जारी किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महीने नागालैंड में 27 तारीख को मतदान होगा।
नागालैंड में चुनाव प्रचार धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। निर्दलीय उम्मीदवारों सहित चुनाव में हिस्सा ले रहे सभी 9 राजनीतिक दलों के उम्मीदवार लोगों से अपना बहुमूल्य मत देकर जनादेश अपनी ओर करने के लिए रैलियां कर रहे हैं। रियो के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक प्रगतिशील पार्टी के नेता भी सभी जिलों में बैठक कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नेफ्यू एनडीडीपी पार्टी के सदस्य के रूप में राज्य विधानसभा के लिए पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। आकाशवाणी कोहिमा से अनिला जबीर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं किरण शर्मा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी मुंबई में 16,700 करोड़ रुपए की लागत से नवी मुंबई हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। हवाई अड्डे में 2 समानांतर हवाई पट्टियां होंगी, जहां से एक घंटे में लगभग 80 उड़ानें संचालित होंगी। प्रधानमंत्री आज मुंबई में मैग्नेटिक महाराष्ट्र सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी आज शाम मुंबई में एक सांस्कृतिक समारोह में भाग लेने के अलावा उद्योग जगत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भी संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। इसी समारोह में वे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल JNPT के चौथे कंटेनर टर्मिनल को देश को समर्पित करेंगे। वह इस शिखर सम्मेलन में एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे और इस दौरे के अंत में मुंबई विश्वविद्यालय में वाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन करेंगे। लुबना यूसुफ मूसा, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
प्रधानमंत्री आज सवेरे नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। नवनिर्मित पार्टी कार्यालय मध्य दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है। कई मंजिली ये इमारत आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी सुविधाओं से लैस है। परिसर में दो भवन हैं जिनसे पार्टी पदाधिकारियों को विभिन्न राज्यों और स्थानीय स्तर पर अन्य पार्टी पदाधिकारियों के साथ तालमेल में मदद मिलेगी। पूरे परिसर में वाईफाई और पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध है। सौर ऊर्जा संयंत्र लगे हैं और भूमिगत कार पार्किंग है। उद्घाटन समारोह में कई केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व पार्टी अध्यक्षों के भी शामिल रहने की आशा है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारमण ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के संलिप्त रहने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में कल संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस ने ही गीतांजलि ज्वेलर्स को बढ़ावा दिया और उन्हें किराए पर भवन उपलब्ध कराया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जितनी भी संपत्ति और विरासत में मिली चीजें हैं वे सब कांग्रेस पार्टी की हैं। पार्टी के नेताओं को ही इसका लाभ मिला है। इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि गीतांजलि जेम्स या जौहरी कारोबार नीरव मोदी के साथ न तो उनका और न ही उनके परिवार का कोई लेन देन है। वित्त मंत्री अरुण जेटली दो दिन की सऊदी अरब यात्रा पर कल रात रियाद पहुंचे। श्री जेटली राजधानी रियाद में भारत सऊदी अरब संयुक्त आयोग की 12वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री जेटली सऊदी राष्ट्रीय विरासत और सांस्कृतिक महोत्सव जनाद्रिया में भारतीय मंडप भी जाएंगे।
आज से शुरू हो रहे अपने दो दिवसीय दौरे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली न केवल 12वीं भारत सऊदी अरब संयुक्त आयोग की बैठक का अध्यक्षता करेंगे बल्कि सऊदी भारतीय व्यापार परिषद का औपचारिक उद्घाटन भी करेंगे। कल शाम स्वदेश वापसी के पहले वित्त मंत्री श्री जेटली अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के साथ साथ सऊदी के व्यापार और निवेश मंत्री मजीद अल कसाबी से मिलेंगे और आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
मालदीव में आपातकाल लागू होने के बावजूद देशभर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष समर्थक प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति यामीन अब्दुल गयूम के त्यागपत्र और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की जेल से रिहाई की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस कार्रवाई में कई लोग घायल हो गए और कईयों को गिरफ्तार किया गया। मालदीव में 1 फरवरी से राजनीतिक उथल पुथल जारी है। पूर्व राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम ने जांच प्रक्रिया को गैर कानूनी बताते हुए जांच में सहयोग से इनकार किया है। वे आपातकाल लगाए जाने के बाद 5 फरवरी से पुलिस हिरासत में हैं। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने शुक्रवार को विपक्षी कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत की 8 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। आज वे ताजमहल देखने आगरा जाएंगे। भारत प्रवास के दौरान श्री ट्रूडो अहमदाबाद, मुंबई और अमृतसर भी जाएंगे। शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उनका पारंपरिक स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। और अब खेल डेस्क से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2020 महिला क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा मैच आज जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दिन में 1:15 से शुरू होगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से आगे है। भारत ने पहला मैच 7 विकेट से और दूसरा 9 विकेट से जीता था। इस बीच भारत और दक्षिण अफ्रीका की पुरुष क्रिकेट टीमों के बीच पहला 2020 मैच आज जोहानिसबर्ग में ही खेला जाएगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल शाम 5:30 से शुरू होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आध्यात्मिक गुरु और संत रामकृष्ण परमहंस की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस सद्भावना और भाईचारे के प्रतीक थे। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए न्यायपूर्ण समाज का सपना देखा था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद चंद्रिका। अखबारों ने भारत ईरान प्रत्यर्पण संधि सहित अहम समझौते होने को प्रमुखता दी है। देशबंधु की पहली सुर्खी है, भारत 18 महीने तक चाबहार का संचालन करेगा। हिंदुस्तान ने तोहफा शीर्षक से लिखा है, चाबहार भारत के लिए मध्य पूर्व से रास्ता खोलेगा। अफगानिस्तान तक पहुंच के लिए अब पाकिस्तान की जरूरत नहीं। हरिभूमि ने दोनों देशों में दोहरे कराधान से बचने के समझौते से व्यापार बढ़ने को सुर्खी बनाया है। पीएनबी घोटाला मामले के विभिन्न आयाम भी अखबारों की सुर्खियों और पड़ताल का विषय बने हैं। जनसत्ता ने लिखा है, आयकर विभाग ने खाते किए सील, शेट्टी सहित तीन गिरफ्तार, बैंक के कई अधिकारी तलब। राष्ट्रीय सहारा में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था अहम खबर बनी है कि बिना चेकअप हुए बीमा भी वैध माना जाएगा। कोर्ट ने कहा, बीमा धारक की मौत होने पर मेडिकल जांच नहीं कराने का बहाना नहीं चलेगा। हिंदुस्तान सहित कुछ अखबारों ने पाकिस्तान में निर्भया जैसे मामलों में चार बार फांसी की सजा सुनाए जाने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। त्रिपुरा में 60 सदस्यीय विधानसभा की 59 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 292 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आज आधारशिला रखेंगे। नई दिल्ली में नए भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली 12वीं भारत सऊदी अरब संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए रियाद पहुंच गए हैं। मालदीव में व्यापक विरोध प्रदर्शन और जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम में जांच से सहयोग से इनकार के बाद राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।